हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। युग और कृषा फिर से एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कृषा थककर युग की बाहों में सोई हुई थी, जबकि युग सोने के बजाय कृषा के चेहरे को ही देखे जा रहा था। कृषा सोते हुए और भी मासूम लग रही थी, तो युग की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। कृषा नींद में थी, तब युग ने धीरे से उसकी बैक पर हाथ घुमाया। कृषा नींद में बड़बड़ाकर बोली, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सोने दोगे, तुम खुद भी सो सकते हो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? कभी कहीं पर हाथ लगा रहे हो तो कभी कहीं पर, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। तुम इतनी रूठ क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम रेस्ट कर सकती हो, तब तुमने मना कर दिया और अब थोड़ी देर में तुम्हें नींद आने लगी, युग ने आइज रोल करके जवाब दिया। युग की बात सुनकर कृषा जल्दी से उठी और उसकी तरफ घूरकर देखने लगी। उसने सिर हिलाकर कहा, रियली? थोड़ी देर? शाम के 5 बज रहे हैं, अब खुद ही टाइम कैलकुलेट कर लो। हम रूम में आए थे तब शायद दोपहर के 1 बज रहे थे। अच्छा, तो तुम सब कुछ कैलकुलेट करके करती हो, युग ने कहा और कृषा को अपने ऊपर खींच लिया। 2.5 साल, राइट? 2.5 साल का टाइम कम नहीं होता है। हाँ, तो तुमने अकेले वेट नहीं किया, मैंने भी तुम्हारे लिए इतना ही वेट किया है, कृषा ने जवाब दिया। फिर वो कुछ पल रुककर अचानक बोली, लंदन चलते हैं ना युग? तुम्हें पता है सब लंदन में है, इसलिए अचानक तुम्हें अब लंदन जाना है। मैंने कुछ देर पहले जो कहा था लगता है वो तुम भूल गई हो। कुछ दिनों तक हम यहाँ अकेले ऐसे ही रहेंगे, तब तक तुम्हें किसी का नाम भी अपने मुंह पर नहीं लाना है, युग ने जवाब दिया। उसने अब तक अपने घर वालों को ये तक नहीं बताया था कि उसे कृषा मिल गई है। कृषा आगे कुछ कहती उससे पहले युग ने उसे बेड पर लेटा दिया। उसने कृषा के बालों को सहलाते हुए कहा, चलो अब नो मोर टॉक्स और तुम सो सकती हो। युग भी कृषा को अपनी बाहों में लेकर वहीं पर सो गया। वहीं युग को गए हुए अब 2 दिन बीत चुके थे। लंदन में सब उसके लिए परेशान हो रहे थे। इन 2 दिनों में युग ने किसी से कॉन्टैक्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि मलिक से भी नहीं। ऊपर से वो अकेले गया था। सिंघानिया फैमिली और राणा फैमिली मिलकर कृषा का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई हिंट हाथ नहीं लगा था। आदित्य सिंघानिया और अमृता माइक के साथ फिलहाल के लिए युग के विला में ही रह रहे थे। वहीं सारा को कृषा की किडनैपिंग का तो पता था, लेकिन वो अभी हॉस्पिटल एरिया से बाहर नहीं आई थी, वो अर्जुन के साथ वहीं पर रहती थी। अर्जुन को कृषा की किडनैपिंग का पता नहीं था, वो अब काफ़ी बेहतर हो रहा था। सारा उसके पास खाना लेकर आई थी, तब उसने सारा से पूछा, कृषा मेरे पास क्यों नहीं आती है? क्या युग उसे ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है? अर्जुन की बात सुनकर सारा की नज़रें झुक गई, वो चुप हो गई थी। तभी दरवाजे पर शब्द की आवाज़ आई, नहीं, युग अब कृषा को टॉर्चर नहीं करता है, वो दोनों वेकेशन के लिए बाहर गए हुए हैं, बोलते हुए शब्द अंदर आ गया। शब्द के आने पर सारा अनकंफर्टेबल हो रही थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। सारा उठकर जाने को हुई, तभी शब्द ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठी रह सकती हो। रुको शब्द, अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा। शब्द वहीं पर रुक गया था। वो वापस अर्जुन के पास आया, तब अर्जुन ने सारा की तरफ देखकर पूछा, जब युग और कृषा के बीच सब कुछ ठीक हो सकता है तो फिर तुम और शब्द बेवजह एक दूसरे से क्यों दूर रह रहे हो? सारा ने नज़रें उठाकर अर्जुन की तरफ देखा और फिर जवाब में कहा, मुझे अपनी लाइफ में वापस लौटना है। कुछ टाइम के लिए मैं अपनी शख्सियत को भूल गई थी कि मैं कौन हूँ। मुझे सिंपल लाइफ नहीं बितानी है भाई, मैं कृषा नहीं हूँ जो बिना किसी शिकायत के युग की सारी बातें सहन कर सकूँ। और मैं भी युग नहीं हूँ, शब्द ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। मुझे इस माफिया की दुनिया से नफरत है, इसके बावजूद मैंने कभी सारा से कोई सवाल नहीं किया। मुझे बिना बताए छोड़कर तक चली गई, तब भी मैं सब कुछ भूलकर इसके पास आया था। लेकिन अभी भी इसे अपनी इसी ईगो में रहना है, तो मुझे भी इससे कोई बात नहीं करनी है, बोलते हुए शब्द की आंखें नम होने लगी थी। वो सारा से बहुत प्यार करता था, लेकिन सारा के एटीट्यूड देखने के बाद उसने वहां रुकना सही नहीं समझा। शब्द वहां से जाने लगा था। जाते हुए वो रास्ते पर रुककर अर्जुन से बोला, मैं वापस मुंबई जा रहा हूँ। इतना कहकर शब्द वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन ने कहा, यह सच में एक एंजल की तरह है और तुम इसका दिल तोड़ रही हो। क्या तुम्हें बिल्कुल दर्द महसूस नहीं होता ऐसा करते हुए? होता है, बहुत तकलीफ भी होती है भाई, लेकिन हम दोनों कभी साथ नहीं रह पाएंगे। बस यही सोचकर मैं अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पाती। आप जानते हो ये कैसा है, आज वो कृषा से प्यार कर रहा है लेकिन कल को गुस्से में उसी को तकलीफ पहुंचाएगा, और उन दोनों की वजह से मेरे और शब्द का रिश्ता कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता, सारा ने जवाब दिया। तुम कुछ पल के लिए ये नहीं भूल सकती क्या कि कृषा के अलावा भी तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी भी अपनी शख्सियत है। तुम्हें कुछ दिनों के लिए माफिया प्रिंसेस बनाया गया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके कैरेक्टर में इतना घुस जाओ कि अपनी लाइफ ही भूल जाओ। अर्जुन सारा को समझाने लगा, देखो कृषा को प्रोटेक्ट करने के लिए अब योग है, तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकती हो। क्या दादू तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, जिस पर सारा चुप हो गई। एक एहसान है भाई, वादा किया था मैंने कि मरते दम तक कृषा की परछाई बनकर उसकी रक्षा करूंगी। आपके लिए ये बहुत फिल्मी लग रहा होगा या फिर कोई छोटा सा कमिटमेंट, लेकिन इस छोटे से कमिटमेंट की वजह से ही आज मैं ये नॉर्मल लाइफ बिता पा रही हूँ, सारा ने जवाब दिया और वहां से जाने लगी। जाते वक्त उसकी आंखों में काफी सारे सीन घूम रहे थे जिनमें वो लगभग 11 साल की रही होगी। सारा उस वक्त एक ऐसी ड्रेस में थी जो न्यूयॉर्क में जुवेनाइल होम के बच्चों को पहनाई जाती थी, सिर्फ 11 साल की उम्र में, जहां बच्चों के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। सारा को तब उम्र कैद की सजा मिली थी। वो सजा बताती थी को सारा का गुनाह माफ करने लायक नहीं था। उस कैद से तो आजाद हो गई थी, लेकिन इस कैद से उम्र भर नहीं हो पाऊंगी। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने मेरी ही जिंदगी का सौदा किया, सारा ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अगले ही पल उस मोमेंट से निकल गई। उसके चेहरे के भाव सख्त थे और वो हॉस्पिटल एरिया से बाहर आ रही थी। पहले सारा को लगा शब्द ने ऐसे ही बोल दिया होगा कि वो वहां से जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि शब्द के हाथ में लगेज था और वो चौपर की तरफ बढ़ रहा था। सारा उसे रोकना चाहती थी पर चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। सारा उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा हुआ जो तुम जा रहे हो, तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। आई विश तुम्हारी लाइफ को कंप्लीट करने वाली जल्द ही तुम्हें मिल जाए। क्या युग और कृषा के बच्चों की कहानी पढ़ना चाहेंगे या इन पर ही स्टोरी खत्म कर दूं?